सप्तम अध्याय ध्वनि विचार। संस्कृत भाषा में ध्वनि शास्त्र पर बड़ी सूक्ष्मता से विचार किया गया है। आज अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में ध्वनि विज्ञान फोनेटिक्स की कुछ चर्चा सुनाई पड़ती है, किंतु संस्कृत भाषा में ही सर्वप्रथम ध्वनि का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। संस्कृत के विद्वानों ने जिस सूक्ष्मता से ध्वनियों का वर्गीकरण एवं स्थान आदि का निर्देश दिया है, उससे उनकी प्रतिभा का पता लगता है। वाणी के रूप, वाणी के चार रूप बताए गए हैं। प्रथम परा, द्वितीय पश्यंती, तृतीय मध्यमा, चतुर्थ बैखरी। परा स्वयं सरस्वती है। वाग ब्रह्म का नाम परा कहा गया है। परा रूप ही अन्य रूपों का आधार है। अन्य तीन रूपों का आविर्भाव उसी परा रूप से हुआ है। परा का कुछ प्रकाशित रूप पश्यंती है, किंतु पश्यंती भी अत्यंत सूक्ष्म है। इस स्तर पर भी वाणी का विभाग वर्णों में नहीं है। यह परा का विकृत रूप है। यह परा एवं मध्यमा को तटस्थ भाव से देखती है, अतः इसे पश्यंती कहा गया है। मध्यमा से भी ध्वनियों का प्रकाशन नहीं है। यह मानसिक वर्णोच्चारण की अवस्था है। पश्यंती एवं वैखरी के बीच में स्थित होने के कारण ही यह मध्यमा है। वैखरी परा वाणी का प्रकट रूप है। इसी स्वरूप में वाणी की अभिव्यक्ति होती है, ध्वनियों का उच्चारण होता है। शब्द समूह वैखरी के अंतर्गत आते हैं। वैखरी वाणी के अंतर्गत वर्णों का उच्चारित रूप होता है। यह वर्णोच्चारण किस प्रकार होता है, यह भी जानना आवश्यक है। वर्णोद्भव। महामुनि पाणिनि ने वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में बड़ी ही महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार किसी भी वर्ण का उच्चारण करने से पहले आत्मा बुद्धि के साथ संयोग स्थापित करती है और अर्थ का पूर्व ज्ञान प्राप्त कर लेती है। क्या कहा जाएगा और किस अर्थ में कहा जाएगा, इसका ज्ञान शीघ्रता से आत्मा प्रज्ञा के साथ मिलकर प्राप्त कर लेती है। जब आत्मा को अर्थ का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो आत्मा मन को बोलने के लिए प्रेरित करती है। मन में जब बोलने की इच्छा हो उठती है, तब मन जठराग्नि को क्रियाशील करता है। या जठराग्नि नाभि से नीचे मणिपुर चक्र में स्थित होती है। जब जठराग्नि क्रियाशील होती है, तो वह नाभि में स्थित समान वायु को प्रेरित करती है। कुछ लोगों के अनुसार नाभि में प्राण वायु क्रियाशील होती है। इसके पश्चात प्रेरित हुई यह वायु ऊपर उठती है और हृदय से आकर ध्वनि उत्पन्न करती है। यह प्रारंभिक गंभीर ध्वनि है और गायत्री मंत्र में इसी ध्वनि का प्रयोग करने को कहा गया है। फिर वह वायु और ऊपर उठकर कंठ में ध्वनि उत्पन्न करती है। यह ध्वनि मध्यम होती है और त्रिष्टुप छंदों के उच्चारण में प्रयुक्त होती है। पुनः वायु और ऊपर उठकर सिर में तीव्र स्वर उत्पन्न करती है। वर्ण इसी तृतीय ध्वनि से उत्पन्न होते हैं। जब वायु सिर पर टकराकर नीचे की ओर आती है, तो उसका स्पर्श दंत, तालु, कंठ, मूर्धा आदि स्थानों से होता है। वर्णों की उत्पत्ति यहीं से होती है। वर्णों के प्रकार। मूल रूप में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। प्रथम स्वर, द्वितीय व्यंजन। स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, किंतु व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ये वर्ण निम्नलिखित हैं। अ, आ, आ, इ, ई, ई, उ, 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 रि, 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 लृ, 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 ए ए ए ए ओ ओ ओ ओ क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ळ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह जिह्वा मूल्य की एक ही संख्या मानी जाती है और उपध्यामानीय की भी एक संख्या मानी जाती है। इस प्रकार कुछ वर्णों की संख्या 63 है। कुछ लोग लिकार को लुप्त भी मानते हैं। यदि लिकार को प्लुप्त मान लिया जाए तो वर्णों की कुल संख्या 64 हो जाती है। यही संस्कृत के वर्ण हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई ऐसा कहा जाता है। इनमें कम या अधिक ध्वनियों की संभावना ही नहीं हो सकती। संसार की सभी भाषाओं की ध्वनियों को इतने ही वर्णों के अंतर्गत रखा जा सकता है। इन वर्णों में स्वर 21 हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म 4, यम 4, अनुस्वार 1, विसर्ग 1, जीवामूल्य 1, उपध्यमानीय 1, द्विस्पृष्ट 1 हैं। इन्हें इस क्रम से नीचे दिया जा रहा है। स्वर अ आ आ 3, ई ई ई 3, उ उ 3, रि 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 3, लि ए ए 3, ओ ओ 3, ए 3, ओ ओ 3, 21 व्यंजन स्पर्श क ख ग घ ळ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ळ त थ ध न प फ ब भ म 25 यादि प्रथम अंतस्थ य र ल व द्वितीय ऊष्म स स सा ह यम कुं खुं गुं घुं अनुस्वार बिंदी विसर्ग जीवामूल्य उपध्यमानीय दिस्पृष्ट लुरी कुल 63। लुरी 3 बराबर 63 धन 1 बराबर 64। यही वर्ण संस्कृत तथा उससे उत्पन्न अन्य भाषाओं में होते हैं, जैसा कि निम्नलिखित श्लोक से प्रकट होता है। त्रिषष्ठिश्च्युत तुस षष्ठीवर्णा वर्णः सम्भूते मतः संस्कृते प्राकृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं शम्भुवा स्वरां विशन्ति रेकेश्च स्पर्शानां पञ्च विशन्तियः यादयश्च स्मृता ह्यष्टो चत्वारश्च यथा स्मृतः अनुस्वारो विसर्गश्च क प चापि पराश्रितो द्विस्पृष्टिश्चिते विज्ञेयो लिकारं प्लुत एवं च। पृष्ठ क्षतिग्रस्त होने के कारण कुछ अंश छूट गया है, क्षमा चाहूँगा। स्वर से उत्पन्न भेद निम्नलिखित 3 प्रकार के हैं। प्रथम उदात्त, द्वितीय अनुदात्त, तृतीय स्वरित। काल से उत्पन्न भेद निम्नलिखित 3 प्रकार के हैं। प्रथम ह्रस्व, द्वितीय दीर्घ, तृतीय प्लुत। स्थान से उत्पन्न भेद निम्नलिखित हैं। प्रथम कंठ, द्वितीय तालव्य, तृतीय मूर्धन्य, चतुर्थ दंत्य, पंचम ओष्ठ्य, षष्ठ अनुनासिक, सप्तम कष्ठ कंठ तालव्य, अष्टम कंठोष्ठ, नवम दंतोष्ठ्य, दशम जीवामूल्य, एकादश उरस्य। इन वर्णों के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात इनका उच्चारण स्थान ही है। पाणिनि ने प्रत्येक वर्ण का उच्चारण की दृष्टि से स्थान निर्देशित किया है। यह कार्य बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से हुआ है और पश्चिमी ध्वनि विज्ञानवेत्ता भी इसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पाणिनि के सूत्र निम्न प्रकार से हैं। अकुह विसर्जनीयम् कंठः इदेतः कंठ तालुः इच्छुष्यानां तालु औदोतोः कंठोष्ठम् ऋतुषाणां मूर्धः वकारस्य दन्तोष्ठम् ऋतुतुलसानां दन्तः जीवामूलीय जीवामूलम् उपदस्यमानीयां नामोष्ठोः नासिका अनुस्वासरस्य च अमंगलानाम नासिका च। उपर्युक्त सूत्रों से विदित होता है कि प्रत्येक वर्ण का उच्चारण किस स्थान से किया जाता है। इन सूत्रों से यह पता चलता है कि कुछ वर्णों का उच्चारण गले से होता है, कुछ का तालु से, कुछ का मूर्धा से, कुछ का दांतों से, कुछ का ओष्ठ से, कुछ का नाक से, कुछ का कंठ और तालु दोनों से, कुछ का कंठ और ओष्ठ से, कुछ का दांत और ओष्ठ से, कुछ का जीवामूल से और कुछ का उर से। इन स्थानों पर वायु टकराती है, जीवा वायु को रोक लेती है और वर्ण का उच्चारण होता है। मुख में ओष्ठ और दांत स्पष्ट नहीं है, मुख में ओष्ठ और दांत स्पष्ट ही हैं, मुख में ओष्ठ और दांत स्पष्ट ही हैं। दांतों से ऊपर की ओर तालु हैं, तालु से भी ऊपर मूर्धा है, कंठ से कुछ वर्ण निकलते हैं और कुछ ध्वनियां जीव की जड़ के पास जब वायु टकराती है तब निकलती हैं। इन्हें ही जीवामूलीय कहा गया है। नासिका से निकलने वाली ध्वनि स्पष्ट ही है। स्थान के क्रम से मूल का स्पष्टीकरण निम्नलिखित होगा। कंठ अ क ग ख घ हुआ ह, तालु ई च छ ज झ इया य श, मूर्धा रि ठ ठ ड ळ ढ र श, दंत ल त थ ध न ल स, ओष्ठ उ प फ ब भ म प फ, नासिका इया म अंग ळ न, कंठ तालु ए ए कंठोष्ठ ओ ओ दंतोष्ठ व, जीवामूल क ख जीवामूल क ख। स्वर्गीय ईश्वरचंद विद्यासागर के अनुसार क वर का उच्चारण जीवामूल से होता है और कंठ से केवल अ और ह का होता है, किंतु पाणिनि के अनुसार क वर का उच्चारण कंठ से होता है। जीवामूल ध्वनि की ओर उन्होंने अलग से निर्देश दिया है। कुछ लोगों के अनुसार जीवामूल्य ध्वनि का उच्चारण पहले उसी प्रकार होता था जिस प्रकार आजकल फारसी के क ख ग आदि वर्णों का होता है। विसर्ग का उच्चारण कंठ से बताया गया है, किंतु एक अन्य सूत्र में इस पर विशेष रूप से विचार किया गया है और विसर्ग जीवामूलीय तथा उपध्यमानीय का उच्चारण स्थान अपने आश्रय वर्ण के स्थान के समान हो जाता है। जैसे बालक में विसर्ग का उच्चारण अ के अनुसार कंठ है, किंतु मुनिया में ई का के अनुसार तालु स्थान है। वह सूत्र निम्नलिखित है। अयोग वह विज्ञेया आश्रय स्थानाम भागनियः, हकार का उच्चारण स्थान कंठ माना गया है, किंतु इस पर भी निम्नलिखित श्लोक में विशेष रूप से विचार किया गया है। हकारम पंचमयूर उक्तमानस स्थाभिश्च संयुक्तम उरस्यम त विजयानियात कंठमारस हुर संयुक्तम, अर्थात आदि यदि अर्थात यदि हकार वर्णों के अंतिम अक्षर अंग इया ड न म तथा अंतस्थ वर्ण य र ल व से युक्त हो तो हकार ह का उच्चारण स्थान कंठ न होकर उर होता है। ब्राह्मण चिन्ह आदि में ह का उच्चारण स्थान उर ही है। आभ्यंतर प्रयत्न से उत्पन्न भेद निम्नलिखित है। स्पृष्ट द्वितीय, ईषत स्पृष्ट तृतीय, ईषत विवृत चतुर्थ, विवृत पंचम, संवृत। स्पृष्ट वर्ण निम्नलिखित हैं क ख ग घ हुआ च छ ज झ या ट ठ ड ळ ट ठ ड ढ ळ त थ द ध न प फ ब भ म अर्थात सभी स्पर्श वर्ण। ईषत स्पृष्ट वर्ण निम्नलिखित हैं य र ल व अर्थात सभी अंतस्थ वर्ण। ईषत विवृत वर्ण निम्नलिखित हैं श श सा ह अर्थात सभी ऊष्म वर्ण। विवृत वर्ण निम्नलिखित हैं अ ई उ रि लि ए ए ए ओ ओ अर्थात सभी स्वर। प्रयोग में ह्रस्व आकार संवृत भी होता है। ह्रस्व इकार तथा उकार भी संवृत कहे जा सकते हैं। वाय प्रयत्न से उत्पन्न भेद निम्नलिखित हैं। प्रथम विवार, द्वितीय संवार, तृतीय श्वास, चतुर्थ नाद, पंचम घोष, षष्ठ अघोष, सप्तम अल्प प्राण, अष्टम महाप्राण, नवम उदात्त, दसम अनुदात्त, एकादश स्वरित। सभी स्वर उदात्त अनुदात्त तथा स्वरित हो सकते हैं। ह वर्ण महाप्राण संवार नाद और घोष है। स श स महाप्राण तो है किंतु विवार श्वास और अघोष हैं। वर्णों के प्रथम व द्वितीय वर्ण अल्प प्राण महाप्राण विवार श्वास और अघोष हैं। वर्णों के तृतीय और पंचम वर्ग अल्प प्राण संवार नाद और घोष हैं। वर्णों के चतुर्थ वर्ण महाप्राण संवार नाद और घोष हैं। य र ल व अल्प प्राण संवार नाद और घोष हैं। आभ्यंतर प्रयत्न उस समय होता है जब किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय जीवा मुख के भीतर स्पर्श या संघर्ष करती है। इसीलिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग को स्पर्श वर्ण कहा जाता है और आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से वे स्पृष्ट वर्ण हैं। अंतस्थ वर्ण अर्ध स्पर्श वर्ण हैं अर्थात वे आधे स्वर और आधे व्यंजन हैं। इसीलिए इन्हें ईषत स्पृष्ट कहा गया है। श श स ह के उच्चारण करने में एक प्रकार का घर्षण होता है इसीलिए उन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में हवा को अंदर से फेंका जाता है और मुख द्वार थोड़ा सा खुला रहता है तथा स्वर यंत्र पर रगड़ उत्पन्न होती है इसीलिए इन्हें ईषत विवृत कहा जाता है। स्वरों के उच्चारण में जीभ की विशेष सहायता नहीं ली जाती और हवा को अंदर से फेंक कर इनका उच्चारण किया जाता है। मुख द्वार खुला रहता है इसीलिए इन्हें विवृत कहा गया है। संवृत वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्र बहुत कम खुला रहता है। वाय प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न में अंतर है। वाय प्रयत्न यह इंगित करता है कि वर्ण का उच्चारण करते समय उसे कितनी सांस के साथ ध्वनित करके मुख के बाहर निकालना पड़ता है। इनके भेदों का वर्णन ऊपर किया गया है। अल्प प्राण और महाप्राण विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। जिन व्यंजनों में कुछ हकार की ध्वनि सुनाई देती है। वे महाप्राण और शेष अल्प प्राण हैं। अघोष और घोष की भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जिनकी ध्वनि गंभीरता के साथ निकलती है उन्हें घोष, और जिनकी ध्वनि कुछ कोमलता से निकलती है उन्हें अघोष कहा गया है। वाय प्रयत्न से स्वर पर भी प्रभाव पड़ता है, या यों कहिए कि स्वर भी एक प्रकार से वाह्य प्रयत्न है। इसीलिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को वाह्य प्रयत्न कृत भेदों में भी रखा गया है और स्वरकृत भेदों में भी। उदात्त में हम वर्णों का उच्चारण उच्च स्वर से करते हैं, अनुदात्त में मंद स्वर से, और स्वरित में मध्यम स्वर से, अर्थात ना किसी मंद और न अधिक तीव्र स्वर से। कला कालकृत भेदों का भी वर्णन किया गया है। एक मात्रा के उच्चारण में या सामान्य रूप से एक ध्वनि के उच्चारण में कितना समय लगता है, इसके आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद किए गए हैं। ह्रस्व में एक वर्ण शीघ्रता से उच्चारण किया जाता है, दीर्घ वर्ण दो ह्रस्व वर्णों की मात्रा का समय लेता है, और प्लुत में कम से कम तीन या अधिक ह्रस्वों का समय लगता है। संस्कृत वर्णमाला। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जिन 63 या 64 ध्वनियों की ऊपर चर्चा की गई है वे सभी ध्वनियाँ लौकिक संस्कृत में नहीं प्रयुक्त होती। धीरे धीरे कुछ ध्वनियों का प्रयोग कम होता गया। उदाहरणार्थ प्लुत वर्णों का प्रयोग वेद मंत्रों के ही उच्चारण में होता है। लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग उठ सा गया है और सभी वर्ण ह्रस्व या दीर्घ में ही प्रयुक्त होने लगे। यही हाल लिरिकार का है। प्लुत लिरिकार तो वैदिक संस्कृत में भी विकल्प से स्वीकार किया गया है। लिरिकार का प्रयोग वैदिक संस्कृत में भी बहुत कम है। लौकिक संस्कृत में तो इसका प्रयोग एक प्रकार से नहीं होता है। इस लि को स्वर माना गया है। इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता था इसके विषय में कोई निश्चित आधार नहीं मिलता। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका उच्चारण अंग्रेजी शब्द वॉटल या लिटल के ल की तरह होता था। जीवामूल्य और उपद्यमानीय का भी प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता था, किंतु लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता। लौकिक संस्कृत की वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण हैं: अ, इ, उ, रि, लि, ए, ऐ, ओ, अ, क, ख, ग, घ, व, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, बिंदी, चंद्र बिंदी। लि के विषय में ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। रि भी संस्कृत में स्वर रूप में प्रयुक्त है। आज रि का उच्चारण उत्तर भारत में रि के रूप में होता और दक्षिण भारत में रु के रूप में। अमृतांजन कृष्ण बृहरि ऋषि का उच्च उच्चारण उत्तर भारत में लोग अमृतांजन कृष्ण बृहरि ऋषि की भांति करते हैं। दक्षिण भारतीय विद्वान इन शब्दों को अमृतांजन कृष्ण बृहरि और ऋषि कहते हैं। प्राकृत और पाली में रि का प्रयोग नहीं मिलता। इन भाषाओं में रि के स्थान पर उ, ई, या, अ हो जाता है। ऋषि को इन भाषाओं में इसी कहते हैं। ऐसी दशा में यह भी ब्रह्म होता है कि री में रकार ध्वनि थी या नहीं, किंतु महाभाष्य में पतंजलि ने री में रकार ध्वनि का संकेत दिया है, अतः री में रकार ध्वनि तो होगी किंतु वह इकरांत या उक्रांत नहीं होगी। ऋकार का उच्चारण संभवतः र में थोड़ा सा एकार लगाकर रही होगी, इस तरह कृष्ण का उच्चारण संभव है। कृष्ण तथा भृतहरि का उच्चारण भत्रेहरि की भांति रहा होगा। लौकिक संस्कृत में ह्रस्व आ का उच्चारण संवृत होता है, किंतु वैदिक काल के पूर्वार्ध में इसका उच्चारण विवृत होता था। श का उच्चारण कुछ संस्कृत के पंडित खा की भांति करते हैं, किंतु यह अशुद्ध है। ए संध्यक्षर है और इसका उच्चारण प्राचीन काल में ऐ की भांति होता था। आजकल हिंदी में इसका उच्चारण दो स्वरों के रूप में ना होकर एक ही स्वर के मूप में होता है और एक को ऐक ना पढ़कर एक ही पढ़ते हैं। ओ का भी यही हाल है। आजकल ओ एक स्वर के रूप में उच्चरित होता है, किंतु प्राचीन काल में इसका उच्चारण औ की भांति होता था और इसे संध्यक्षर माना गया था। ये भी संध्यक्षर है और इसका प्राचीन उच्चारण आई के रूप में था, किंतु आजकल इसका उच्चारण ऐ या ए के रूप में होने लगा है। औ का प्राचीन उच्चारण आऊ है, किंतु आजकल यह औ अथवा औ के रूप में उच्चरित होता है। प्राकृत में भी ए को ई और औ को औ हो जाता है। हिंदी में इनका उच्चारण संभवतः प्राकृत से इन रूपों में आया हो। लौकिक संस्कृत में ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ नहीं मिलते, किंतु वैदिक संस्कृत में ह्रस्व ए और ओ का उच्चारण था, जैसा कि महाभाष्य के निम्नलिखित उदाहरण में स्पष्ट होता है। ननु चैंगम संस्थान रात वर्धम एकोराधम ओकार न तो स्तः यदि तो इस्यातम वेवायम उपदेशित ननु च भोस्त छंद छंदोगानाम सात्य मुग्रीराणानिया अर्धमेकार मर्धम कारम चाधीयते सुजाते ए अश्व सुनृते अध्वर्यो ओ आद्रिभि सुतम सुकम ए अन्यत युजत ते ए अन्यत इति च त्र और ज्ञ संयुक्त वर्ण हैं। त्र के उच्चारण में तो अशुद्धि नहीं होती, किंतु ज्ञ के उच्चारण प्रायः अशुद्ध किए जाते हैं। क्ष की रचना क प्लधन स से होती है। क्ष की का उच्चारण प्रायः क्ष के रूप में कर बैठते हैं और ज्ञ को ज्ञ ज्ञ दंत धन्य के रूप में पंजाब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में विद्वान लोग भी उच्चारण करते हैं। गुजरात में इसे ग्न की भांति बोलते हैं। अक्षरों की रचना स्पष्ट है और इसमें भ्रम की गुंजाइश नहीं। यथासंभव इनका उच्चारण क्ष और ज्ञ के रूप में करना चाहिए। यह वर्ण स्वर वर्णों में से किसी शब्द में नहीं मिलता। अंजन चंचल आदि शब्दों में वह व्यंजनों से संयुक्त है, किंतु वहाँ पर भी आजकल उसका उच्चारण अनुस्वार और ना की भांति होने लगता है और अंजन अंजन और अंजन एवं चंचल चंचल और चंचल के उच्चारण में समानता सी दिखाई पड़ती है, किंतु अंग उआ इया ड म तथा ना के शुद्ध उच्चारणों की रक्षा होनी चाहिए। संस्कृत की वर्णमाला ही दो एक वर्णों के हेर फेर के साथ हिंदी में स्वीकृत हुई है। ये ध्वनियाँ तो दिव्य हैं, अक्षय हैं, किंतु इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जो लिपि अपनाई गई है वह भी महत्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वर्णों के नाम और उच्चारण एक ही हैं। क ख ग घ अक्षरों का जो नाम है वही इनका उच्चारण भी है। अन्य लिपियों में यह सजीव विशेषता नहीं है। उदाहरणार्थ रोमन लिपि में ए बी सी डी ई अक्षर लिखे जाते हैं, जिनके नाम ए बी सी डी ई हैं, किंतु उनका उच्चारण अ ब स द ई की भांति होता है। इसीलिए जब हम किसी का नाम केपी सिंह जानते हैं और जब बाद में हमें बताया जाता है कि उनका नाम क्षेत्रफाल पाल सिंह है तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है। यूएनओ, सीटो, सेंटो, नेफा, यूनेस्को आदि शब्द वर्णों के नाम के आधार पर बना लिए गए हैं, जिनका उनके असली नाम के उच्चारण से कोई संबंध नहीं है। देवनागरी लिपि की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही लिखित रूप स्वीकार किया गया है। रोमन लिपि की बात यह नहीं है कि क ध्वनि व्यक्त करने के लिए सी के सी एच क्यू जैसे अनेक लिपि प्रतीक हों। देवनागरी में ख लिखना है तो वह इसी ख प्रतीक के रूप में लिखा जाएगा। इस लिपि में एक प्रतीक से एक ही ध्वनि निकलती है, यह इस लिपि की तीसरी विशेषता है। जैसे उ प्रतीक में उ ध्वनि निकलती है, अन्य नहीं। रोमन लिपि में यू प्रतीक से बट में अ, पुट में उ, यूनिट में यू तथा बाबू में ऊ की ध्वनियां निकलती हैं।